श्रोता नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यूहन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
हमको है यकीन हम जाएंगे वही जहां यीशु रहता है। हमको है यकीन हम जाएंगे वही जहां यीशु रहता है, जहां यीशु रहता है। कोई दुश्मनी पर कोई शांति रहेगी, न कोई भूख होगी न कोई प्यास होगी न कोई उलझन होगी, न कोई दुख होगा न कोई दुश्मनी पर कोई शांति रहेगी। हमको है यकीन हम जाएंगे वही जहां यीशु
है। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने मित्रों और परिवार के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर सकें। आज जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो निश्चित रूप से आपके वचन के द्वारा हर एक का जीवन बदलने पाए। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, आप उनकी भी सुधि लें, उनसे भी बोले और बातचीत करें ताकि वे जाने पाएं कि आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, आप उनकी चिंता करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज के वचन पर भी अपनी आशीष दे। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। यूहन्ना सातों कलीसियाओं को नमस्कार में त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम प्रतिष्ठित करता है, जो था और है और जो आने वाला है। यह पिता परमेश्वर का और उन सातों आत्माओं से उसका अभिप्राय है, पवित्र आत्मा तथा यीशु मसीह जो पुत्र परमेश्वर है। प्रभु यीशु हमसे अर्थात अपनी कलीसिया से प्रेम करता है। क्योंकि उसने हमें अपने लहू के द्वारा पापों से छुड़ाया है और उसके पिता परमेश्वर के लिए याजकों का समाज बना दिया है, और वह बादलों के साथ आकर हमें उठा ले जाएगा। उसके बाद वह पृथ्वी पर उतरेगा, उस समय उसका त्याग करने वाले उसे पहचान कर बहुत रोएंगे, छाती पीटेंगे। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय के 8 पद को पढ़ते हैं। लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। यूनानी भाषा की वर्णमाला में अल्फा पहला अक्षर है और ओमेगा अंतिम अक्षर है। अल्फा अक्षर से आप शब्द बना सकते हैं और प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन कहलाता है। वह परमेश्वर का संपूर्ण प्रकाशन और बौद्धिक संचारण है। वही एकमात्र अक्षर है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। परमेश्वर की बोलने और समझने की एकमात्र भाषा वही है जिसमें प्रभु यीशु अल्फा और ओमेगा है और उनके मध्य सब अक्षर हैं। यदि आप पिता परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा ही जाना होगा। यहां जिस बात पर मुख्य ध्यान दिया गया है वह है आरंभ और अंत। यहां ओमेगा पर अल्फा के बराबर उच्चारित बल नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु आरंभ है और आरंभ पूरा हो चुका है, परंतु अंत अभी होना बाकी है। एक दिन वह परमेश्वर की योजना को पूरा करेगा। यूनानी भाषा के धर्मशास्त्र में यह विवरण बड़ा रोचक है, आरंभ और अंत, यूं कहें आदि और अंत, पुत्र की शाश्वतता और अपरिवर्तनीयता के विषय में है। इसके संदर्भ में इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय के 8 पद में लिखा है, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। युगानुयुग एक सा होने का अर्थ यह नहीं है कि वह आज भी गलील सागर के क्षेत्र में विचरण कर रहा है। इसका अर्थ है कि वह अपने गुणों में आज भी वैसा ही है जैसा पहले वह था। वह अपरिवर्तनीय है क्योंकि वह आरंभ और अंत है। वह संपूर्ण समय और अनंत काल को अपने में लिए हुए है। आगे लिखा है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, यह प्रभु यीशु के ईश्वरत्व की पुष्टि है। लिखा है, जो है, अर्थात इस समय वह महिमामय मसीह है। जो था, प्रभु यीशु जब उद्धारकर्ता होकर के आया था। जो आने वाला है, प्रभु यीशु का इस पृथ्वी पर आना और राज्य स्थापित करना है। पद 4 से 8 में यूहन्ना के अभिवादन का अति उत्तम अंश है। यह अभिवादन प्रभु यीशु की ओर से भी दिया गया है। स्मरण रखें कि वह कहता है, वह आपसे प्रेम करता है, अतः हम आगे का वचन पढ़कर डरे नहीं। आगे हम देखेंगे देह धारण के बाद का प्रभु यीशु महिमामय देह में अपनी कलीसिया का न्याय करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय के 9 पद में लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पत्मुस नामक टापू में था। मैं यूहन्ना, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना 3 बार कहता है मैं यूहन्ना, कहता है तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश में तुम्हारा सहभागी। यह महाक्लेश के विषय में नहीं है, यूहन्ना कष्ट में था। जी हां, रोमी सम्राट डोमिशियन सन 96 में राज्य कर रहा था। उसने उसे पत्मोस टापू में बंदी बना करके रखा था। यूहन्ना इफिसूस की कलिसिया में सक्रिय था और अन्य सब कलिसियाओं की देखरेख भी करता था। वह परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता था। परमेश्वर के वचन की समग्र शिक्षा देने के कारण आप समस्या में पड़ जाते हैं। यूहन्ना कष्टों से परिचित था। आरंभिक कलीसिया भी कष्टों को अनुभव कर रही थी। यदि आज हम पर कष्ट आए तो वह कोई भी नई बात नहीं है। मेरे प्रियो, मैं फिर कहता हूं कि यूहन्ना महाक्लेश नहीं कलीसिया के सताव के बारे में कहता है। राज्य हजार वर्ष का प्रभु राज नहीं, वर्तमान राज्य है। नया जन्म पाने के कारण पापी जन मसीह में अवस्थित होते हैं और वह परमेश्वर के राज्य का भाग बन जाते हैं। प्रभु राज तब होगा जब प्रभु यीशु आकर इस पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना करेगा। किसी ने कहा है कि हम आज राज्य और धीरज में वास कर रहे हैं। धीरज पर उसने बल दिया है। यूहन्ना पतमुस टापू पर होने का कारण बता रहा है। वह एक 15x9 किलोमीटर का द्वीप था जिसका उद्गम ज्वालामुखी से हुआ था और अत्यधिक दुर्गम स्थान था। आगे देखते हैं यीशु। यूहन्ना प्रभु यीशु को अपने सुसमाचार वृतांत और प्रकाशित वाक्य में यीशु ही कहता है। जब वह प्रभु यीशु को महिमा में व्यक्त करना चाहता है तब वह उसे यीशु कहता है और फिर उसको बहुत अधिक प्रतिष्ठित करता है। हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इससे पूर्व कि हम आगे के पदों को पढ़ें, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, कराना चाहता हूँ कि उसे यह महान दर्शन पतमोस टापू पर दिया गया था। यह प्रभु यीशु की महिमामय देह में था जब वह अपनी कलीसिया का न्याय करता है। दूसरे शब्दों में हम महान महायाजक को महापवित्र स्थान में देखेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 10 और 11 पद में लिखा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और पिरगमोन और थुआथिरा और सदिश और फिलाडेल्फिया और लौदिकिया को। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। यही कारण है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु की बातों में से लेकर समझाए। यही तो प्रभु यीशु ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब वह हमें यीशु की बातें समझाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरे मित्रों, अब हम महिमामय मसीह यीशु का दर्शन देखना आरंभ करते हैं। हम उसे महान महायाजक के पद पर देखते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इन महान पदों की व्याख्या करने में योग्य नहीं हूं। केवल परमेश्वर का आत्मा उन्हें हम पर सत्य सिद्ध कर सकता है। तथापि इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय के 1 पद में लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो पवित्र बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। अतः हम उसे उसके महायाजक पद पर देख रहे हैं। लिखा है, आत्मा में आ गया। पवित्र आत्मा यूहन्ना पर उतरकर उसे प्रगतिशील चित्रण दिखा रहा था। यह सुनना और देखना दोनों ही था। तब कहता है, प्रभु के दिन। इसके अर्थ में मतभेद है। कुछ विख्यात विचारकों के अनुसार यह दिन यहोवा का दिन है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, परंतु उनके इस विचार से सहमत नहीं हूं। जबकि प्रकाशित वाक्य का महान विषय यहोवा का दिन ही है, जो महाक्लेश और प्रभु राज है। यूहन्ना कहता है कि प्रभु के दिन वह आत्मा में आ गया था। अब प्रभु के दिन और यहोवा के दिन में महान अंतर है। प्रभु का दिन रविवार है। कृपया इस बात को ध्यान में रखें। आगे हम देखते हैं, तुरही का सा बड़ा शब्द सुना। तो वह क्या था? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक अध्याय उसके 12 और 13 में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। यूहन्ना ने तुरही का भारी शब्द सुना जो उससे बात कर रहा था। जब प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरेगा और अपनी कलीसिया को पृथ्वी से उठाएगा तब वह बड़ी पुकार के साथ आएगा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय के 16 पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। मेरे प्रियो, उसकी आवाज प्रधान स्वर्गदूत के समान होगी और ऐसी सुनाई देगी जैसे तुरही फूंकी जा रही हो, यही यहां पर कहा गया है। परंतु यह मसीह यीशु की वाणी होगी, उसे अपनों को जीवित करने के लिए प्रधान स्वर्गदूत की आवश्यकता नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह का यह चित्रण देखना अत्यधिक आनंददायक है। यह मनुष्य के पुत्र का सा दर्शन है। वह पांवों तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। 7 दीवटें हमें मिलाप वाले तंबू का स्मरण कराती हैं, परंतु वहां एक ही दीवट की 7 भुजाएं थी और यहां 7 दीवटें हैं। ये 7 दीवटें 7 कलीसियाओं का प्रतीक हैं। पद 20 में हम इसे देखते हैं, इसी कारण यह अंतर है। परंतु उनका उद्देश्य एक ही है, जैसा प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 12 पद में कहा है, जगत की ज्योति मैं हूं और मेरे प्रस्थान के बाद तुम जगत की ज्योति होगे। मेरे मित्रों, यहां हम प्रभु यीशु को हमारे महान महायाजक के रूप में देखते हैं। वह महायाजक के वस्त्र पहना है। निर्गमन की पुस्तक 28 अध्याय के 2-4 पद में आप देख सकते हैं, वस्त्र प्रभु यीशु की मूल धार्मिकता का प्रतीक है। उसमें पाप नहीं था, वह पाप से अनजान था। पटुका के विषय में जोसेफुस एक इतिहासकार का कहना है कि याजक की छाती पर पटुका बांधना था, जबकि उस समय का आम अभ्यास था कमर में पटुका बांधना। परंतु यहां जिस बात पर बल दिया गया है वह सेवा की अपेक्षा सामर्थ है। वह उसके सत्यवादी न्याय का प्रतीक है। मेरे प्रियो, हमसे कहा गया है कि हम अपने इस महान महायाजक को निहारें जो कलीसियाओं के मध्य खड़ा रहता है। वह कलीसियाओं का न्याय कर रहा है, विश्वासियों का न्याय कर रहा है कि उसकी ज्योति चमकती रहे। प्रभु यीशु की वर्तमान सेवा को समझना महत्वपूर्ण है। इस कारण मैं प्रभु यीशु को वर्तमान मसीह कहता हूं। आज मैं प्रभु यीशु की सेवा के बारे में नाना प्रकार की मूर्खता भरी बातें सुनता हूं। परंतु मेरे मित्रों, धर्मशास्त्र हमें अंधकार में नहीं रखता है। धर्मशास्त्र उसकी 3 सेवाएं स्पष्ट करता है। पहला, मसीह की मध्यस्थता। वह हमारा महान महायाजक है। वह आज स्वर्ग में सोने की वेदी के निकट खड़ा है और हमारे लिए लगातार विनती करता रहता है। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय के 25 पद में हमें उसकी सेवा का यह भाग अत्यधिक मनभावन लगता है। दूसरी बात है मसीह की मध्यस्थता। वह पवित्र स्थान से बाहर आकर हौद के निकट खड़ा है जहां वह अपनों के पांव धोता है। वह पापों का अंगीकार करने वालों को भी धोता है। विश्वासियों को उसके साथ सहभागिता बनाए रखने के लिए अपने पापों का अंगीकार करना आवश्यक है। यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय के 9 पद में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वह कमर में तौलिया बांधे हाथ में पानी का पात्र लिए हमारी ओर से मध्यस्थता करता है। मेरे प्रियो, अपनी पहली पत्री में यूहन्ना यह भी कहता है, पहला यूहन्ना के पत्र 2:1 में, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। जी हाँ, प्रभु यीशु हमारा मध्यस्थ अर्थात वकील भी है। वह हमें हर एक दोष से बचाता है। हम पर दोष लगाने वाला तो शैतान है। तीसरी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु की एक और सेवा है जो अधिक चर्चित नहीं है, जिसका उल्लेख प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 में किया गया है। यही कारण है कि प्रकाशित वाक्य का यह अंश बहुत कम जनमान्य है। यह उसकी निगरानी की सेवा है। प्रभु यीशु की आज की सेवा धर्मशास्त्र में स्पष्ट की गई है। वह स्वर्ग में जाकर पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, परंतु वह निष्क्रिय नहीं है। उसके बैठने का अर्थ है कि उसने मुक्ति का कार्य पूरा कर लिया है। वह पृथ्वी पर मर गया कि हमारा उद्धार करे और स्वर्ग में जीवित है कि हमें उद्धार में स्थिर रखे। मेरे विचार में आज वह अधिक व्यस्त है कि हमें उद्धार की अवस्था में संभाले रखे। हमारे सामने प्रभु यीशु की ये 3 सेवाएं हैं, मध्यस्थता करना, विनती करना और हमारी निगरानी करना। अब यहां हम उसकी निगरानी की सेवा देखेंगे। वह इस समय कहां है? यहां हम उसे दीवटों दीपदानों के मध्य चलता हुआ देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक में सोने के दीवट का उल्लेख किया गया है। यह मिलाप वाले तंबू की सबसे सुंदर वस्तु थी। ठोस सोने के इस दीपदान के स्तंभ के दोनों ओर 3-3 भुजाएं थी। प्रत्येक भुजा के सिरे पर एक बादाम का फूल बना हुआ था, जिसके ऊपर दिया रखा जाता था। ये दिए पवित्र आत्मा का प्रतीक थे, परंतु यह संपूर्ण दीवट प्रभु यीशु की महिमा और ईश्वरत्व का प्रतीक था। प्रभु यीशु ने जगत में पवित्र आत्मा भेजा था। इस दीपदान में दिए रखे हुए थे जो इस दीपदान की सुंदरता और वैभव का वर्णन करते थे। प्रकाशित वाक्य में यही चित्रित किया गया है। मेरे प्रियो, मुझे पूरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा आज भी प्रभु यीशु को उसके संपूर्ण वैभव सौंदर्य और महिमा में आप पर प्रकट कर रहा है कि आप उसकी उपस्थिति के प्रकाश में उसके निगरानी में सारी बातों को समझ पाएं। आज यह शिक्षा नहीं दी जाती है। हम नहीं चाहते कि कोई हमारा निरीक्षण करे, परंतु प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में हम इसे दीवटों के मध्य चलता हुआ देखते हैं, जहां वह अपने निगरानी की सेवा कर रहा है। मिलाप वाले तंबू में इस दीवट की देखरेख केवल महायाजक के उत्तरदायित्व में थी। अन्य सब सेवाएं याजकों की देखरेख में थी। सोने की दीवट की देखरेख केवल महायाजक के हाथ में थी। उन दीपकों में तेल डालना, उनकी बत्ती को संवारना और जलाना केवल महायाजक का काम था। यदि कोई दीपक धुआं देता था और उचित प्रकाश नहीं दे पाता था तो महायाजक उसे फूंक कर बुझा देता था। प्रभु यीशु आज दीवटों के मध्य चल रहा है, अर्थात कलीसियाओं में विचरण करता है और अनेक सेवाएं प्रदान करता है। वह बत्तियों को संवारता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 में लिखा है कि परमेश्वर विश्वासियों को काटता और छांटता है कि वे अधिक फल लाएं। वह हमें इस पृथ्वी पर कष्ट उठाने देता है कि हम फल लाएं या हमारी ज्योति अधिक चमके। वही है जो तेल डालता है। तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। मैं लोगों से सुन सुन कर उब गया हूं। पवित्र आत्मा यह है, पवित्र आत्मा वह है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु कलीसिया का सिर है। उसी ने तो इस संसार में पवित्र आत्मा भेजा है। उसने कहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब वह कुछ विशेष कार्य करेगा। कोई पुराना काम नहीं जो आप चाहते हैं कि वह करे। पवित्र आत्मा वही कर रहा है जो करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे भेजा है। मसीह यीशु कलीसिया का सिर है। प्रभु को ज्योति चाहिए और वही है जो ज्योति प्रसारण के लिए पवित्र आत्मा देता है। यदि किसी सेवा से ज्योति निकलती है तो वह केवल पवित्र आत्मा की सेवा है, वही स्रोत है। मुझसे किसी प्रकार भी ज्योति का उद्गम नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु कुछ और करता है और मैं इस पर कांप उठता हूं। वह बत्ती बुझा देता है। यदि किसी बत्ती से धुआं उड़ता है तो वह उसे बुझा देता है। यूहन्ना के कहने का अर्थ यही था जब उसने पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसके 16 पद में कहा कि पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। आप और मैं अलग किए जा सकते हैं। जी हाँ, मैं कितने लोगों को जानता हूं जो अलग किए गए हैं। प्रभु यीशु दीवटों के मध्य विचरण कर रहा है। वह चाहता है कि उनसे ज्योति प्रवाहित हो। मेरे मित्रों, वह आपके जीवन में ज्योति देखना चाहता है ताकि लोग आपके द्वारा आशीष पाएं। मेरे श्रोता मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
यीशु तेरा प्यार कितना सुंदर है, कितना मधुर है। यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार। सागर